मेरे मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं अधिकरण सुधार कानून 2021 के बारे में आज कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले जो दो समाचार हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इनमें जो सबसे प्रमुख है वो है, आपने न्यूज में सुना होगा कि जो हमारे यहाँ वाहन उद्योग हैं और जो ड्रोन उद्योग हैं इसके लिए प्रोत्साहन योजना मंजूर की गई है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बात की थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की है कि भारत को जो है हम ड्रोन हब बनाना चाह रहे हैं। उस समय कुछ छूट दी गई थी, इसकी प्रक्रिया को सरल बनाया गया था। अब आर्थिक प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। आपको मालूम है कि हमारे यहां भी वाहन उद्योग की अभी बहुत संभावना है, और जब से वाहन स्क्रैप पॉलिसी आई है, यानी कि कुछ वर्षों के बाद वो वाहन बिल्कुल खत्म कर दिए जाएंगे, सड़क पर नहीं चलेंगे, तो इससे वाहन की लगातार डिमांड बढ़ेगी। तो ये क्षेत्र बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है। तो सरकार चाहती है कि वाहन उद्योग की दृष्टि से और ड्रोन की दृष्टि से भारत एक बहुत ही प्रमुख केंद्र बने। इसमें न केवल हमारे अपने ही उद्योगपति निवेश करें बल्कि विदेशों से भी निवेश इस क्षेत्र में आए। और इतना तो आप बहुत अच्छे से जान गए हैं कि जब उद्योग लगते हैं, जब बाहर से निवेश आएगा, यहां तक कि बाहर से जब टेक्नोलॉजी आएगी, तो फिर हमारे यहां जो रोजगार के अवसर हैं वो ज्यादा बन सकेंगे। और अभी पूरी दुनिया सच पूछे तो रोजगार के अवसरों की तलाश में है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, परंपरागत जो उद्योग हैं, आप देखिए कि जहां हमें रोजगार मिलते थे वो कम होते चले जा रहे हैं, तो नए अवसर तलाशने ही होंगे, और भारत को तो इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो देखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब बहुत ही आसान है कि आप उत्पादन कीजिए और उत्पादन के आधार पर आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, थोड़ी सी जानकारी ही मुझे लगता है कि पर्याप्त है, और आज के अखबारों में काफी कुछ इस पर लिखा गया है, आप उनसे देख लेंगे। लेकिन हमारे यहां जो मेक इन इंडिया और जो स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही जा रही है, आप खासकर इस योजना को उसी का हिस्सा मान करके चले। आप देख रहे हैं कि डिफेंस में कैसे धीरे धीरे हमारी स्थिति बेहतर होती चली जा रही है, हम स्वावलंबी होते चले जा रहे हैं, तो दूसरे क्षेत्रों में भी अब इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। तो यूं मान करके चलें कि भले ही यह अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन न बन रहा हो कि ड्रोन हब भारत बनने वाला है या वाहन उद्योगों के लिए क्या किया जा रहा है, लेकिन जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं या मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो उसके तहत यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका उल्लेख जरूर करें। ये बातें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं अच्छे मार्क्स लाने की दृष्टि से। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वो टेलीकॉम को लेकर के है कि टेलीकॉम जो क्षेत्र है, आप देखिए कि बढ़ तो रहा है लेकिन इसकी हालत बड़ी खराब होती जा रही है। वोडाफोन वगैरह बंद होने के करीब आ गए हैं, आपने इसके बारे में इससे पहले काफी कुछ जाना है। अब सरकार ने इसको रिवाइव करने के लिए कुछ कोशिशें की हैं, और जिसके तहत यह है कि जो स्पेक्ट्रम है वो 20 की जगह 30 साल के लिए उनको दे दिया जाएगा। जो कंपनियां हैं उनको जो भुगतान करनी है जिस राशि की, उसके लिए उनको ज्यादा वक्त दिया जा रहा है। स्पेक्ट्रम अगर वो आपस में शेयरिंग करते हैं तो उसके लिए कोई अलग से उनसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर कोई नया लाइन लेना चाहता है तो उसे अब बहुत ज़्यादा कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह की आप कह लीजिए कि सहूलियतें उपलब्ध कराई गई हैं, और उम्मीद की जा रही है कि इससे जो हमारा टेलीकॉम उद्योग है जो धीरे धीरे डाउन ट्रेंड की ओर था, कुछ कंपनियां बहुत ही खस्ता हाल में पहुंच गई थी, दिवालिया होने के करीब थी और अपना कारोबार समेटने वाली थी, शायद इससे फिर से वो रिवाइवल की तरफ आ सकें। तो ये दो छोटी छोटी घटनाएं थी, या दो छोटे छोटे समाचार थे आप जो कह लीजिए। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वो है अधिकरण सुधार कानून 2021। आज के अखबारों में आपने पढ़ा और मुझे लगता है कि मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट एक तरह से टॉपिक बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है जनहित याचिका को लेकर के, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कल एक टिप्पणी की है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हमने कुछ रिकमेंड किए थे नाम, यानी कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं हमारे अधिकरण, यानी कि ट्रिब्यूनल्स, आपको मालूम है कि ट्रिब्यूनल्स में सुधार के लिए सरकार की दृष्टि से एक कानून पारित किया गया, बनाया गया, विधेयक पारित किया गया और वो कानून बना। उसके तहत जो कुछ हमारे ट्रिब्यूनल्स थे उनको समाप्त कर दिया गया, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, खासकर जैसे हमने देखा था कि फिल्म उद्योग से संबंधित जो अपीली न्यायाधिकरण था उसे समाप्त किया गया, कुछ और भी किए गए, 8-9 कुछ इस तरह के अधिकरण समाप्त किए गए और उनके दायित्व दूसरों को सौंप दिए गए। सरकार का ये कहना था कि ये जो अपील अधिकरण है जिन्हें समाप्त किए गए हैं ये बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, इनके पास जो केसेज आ रहे हैं वो बहुत कम है, सरकार का इतना खर्चा हो रहा है, तो उन्होंने उसे बंद कर दिया। ठीक है, चलिए, उसको लेकर के विरोध भी हुआ। और इसी समय सरकार फिर एक कानून लेकर के आई कि जो इसमें अपॉइंटमेंट होंगे अधिकरण में किस आधार पर होंगे। तो देखिए, जो अपॉइंटमेंट होते हैं अधिकरण में, जो न्यायालय है हमारे, जुडिशरी है, जो प्योर जुडिशरी आप कह लीजिए, उसमें तो जजेज ही होते हैं जिसके लिए आपको LLB और ये वो सबकी पृष्ठभूमि चाहिए, आप वकील होने चाहिए, इस तरह की योग्यताएं चाहिए। लेकिन जो अधिकरण होते हैं उसमें जजेज होते हैं और साथ ही साथ टेक्निकल पर्सन होते हैं या प्रोफेशनल होते हैं या कह लीजिए उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण से संबंधित कोई अधिकरण है तो वहां जब कोई भी मामला आता है तो पर्यावरण का कोई ना कोई एक्सपर्ट तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्सपर्ट तो होनी चाहिए। तो अधिकरण में दो तरह के मेंबर्स होते हैं, आप कह लीजिए, मेंबर शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जुडिशरी के होंगे क्योंकि कानूनी जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ सब्जेक्ट के एक्सपर्ट भी होते हैं। अब सवाल यह है कि इनकी जो नियुक्ति होगी वो कैसे होगी, तो वो सरकार अभी कानून जो लेकर के आई है उसमें व्यवस्था की गई है, राइट, उसमें व्यवस्था ये की गई है, आप इसे देख लीजिए तो आप सुप्रीम कोर्ट ने जो कल टिप्पणी की है उसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि इसके लिए कमेटी बनाई गई है जो सिफारिश करेगी नामों की। और ये जो कमेटी है ये है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, यानी कि ये लोगों की खोज करेगी और फिर जब लिस्ट बना लेगी, मतलब मान लीजिए कि उसे 10 नाम सुझाने हैं, 10 नाम सुझाने के लिए वो 50-100 लोगों की खोज करेगी कि भाई सब्जेक्ट के एक्सपर्ट कौन है, कौन ठीक हो सकते हैं, सर्च करेगी और फिर सर्च करने के बाद वो सेलेक्ट करेगी, सेलेक्ट करने के बाद नाम का जो पैनल होगा वो सरकार को भेज देगी और सरकार फिर उसमें अपॉइंट करेगी। ये सरकार का अधिकार है और इसी कानून में ये भी व्यवस्था की गई है कि सरकार सिफारिश के 3 महीने के अंदर इनकी नियुक्ति कर देगी, वो अनंत काल तक के लिए नहीं टाल सकती, तो एक अच्छी बात है। तो ये जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है बहुत इंपॉर्टेंट समिति हो गई। तो देखिए कि ये बनती किन से है, मेरी समझ से प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है, किसका गठन कैसे होता है। तो जो कोई भी कमेटी होती है उसका एक अध्यक्ष होता है, तो जो इसके अध्यक्ष होंगे, देखिए कि कितनी हाई लेवल कमेटी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और या फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किसी मेंबर को नॉमिनेट करेंगे, लेकिन नॉमिनेट जिसे करेंगे वह भी सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ही होना चाहिए, वर्किंग जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हो वही होना चाहिए। तो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद उसके अध्यक्ष होंगे या उनके द्वारा जो नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो होंगे, और ये जो अध्यक्ष होंगे इनको बकायदे निर्णायक मत होगा। निर्णायक मत का मतलब आप जानते हैं, कास्टिंग वोट पावर, यानी कि अगर बराबर बराबर मत आ गए हैं तो फिर जो अध्यक्ष है वो अपना मत दे करके फैसला करा देगा, तो उसे हम कहते हैं निर्णायक मत का अधिकार। तो एक तो अध्यक्ष हो गए, इसके बाद दो जो मेंबर्स होंगे इसके, उन्हें गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होंगे। अब सरकार के ऊपर है कि वो किन्हें दो सचिव को नॉमिनेट करती है, तो दो सचिव हो गए। इसके बाद जो एक सदस्य होगा वो होगा या तो वर्किंग या आउटगोइंग अध्यक्ष जिसके लिए आप अपॉइंट कर रहे हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, अब यहां रिटायर्ड की बात आ गई, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, याद रखिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज नहीं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, ये एक मेंबर होंगे। और जो एक और मेंबर होंगे वो होंगे कि ट्रिब्यूनल्स का संबंध जिस मंत्रालय से होगा, जैसे कि मान लीजिए कि हरित अधिकरण के लिए नियुक्तियां होनी है तो वो एक तरह से एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का हिस्सा है, तो एनवायरमेंट मंत्रालय के सचिव होंगे, ये भी इसके सदस्य होंगे। लेकिन ये जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के जो सचिव होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट के, उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो दोस्तों ये सिचुएशन बनाई गई है, तो ये सिलेक्शन कमेटी है जिसे कहते हैं सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। ये नाम सरकार को देगी और सरकार फिर उनमें से 3 महीने के अंदर नियुक्ति करेगी। तो मजेदार बात यह है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि हमने लिस्ट भेज दी थी, बकायदे पैनल भेज दिया था, तो सरकार ने उन पैनल से में से कुछ को अपॉइंट किया जबकि पूरा भेजा हुआ है, और इसके बाद वो प्रतीक्षा सूची में चले गए, वहां से लिया। अब देखिए, कानूनी रूप से तो सरकार का यह अधिकार है, मानने के लिए सरकार विवश नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि आप अपनी पसंद नापसंद का इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहां कानून का राज्य है और चीजें संविधान के अनुसार होनी चाहिए। फिर उन्होंने एक और इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि यदि आप किसी के नाम से असहमत है, जो पैनल में है ऑलरेडी, पहले सेकेंड थर्ड फोर्थ पोजिशन पर है, और आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, कारण बताइए कि इन्हें रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है। देखिए, होता क्या है फ्रेंड्स कि इस तरह की जो कमेटीज होती हैं या इस तरह के जो अपॉइंटमेंट होते हैं, इनमें लगातार इस बात की कोशिश की जाती है कि तटस्थ होकर काम कर सके, मतलब ये नहीं कि सरकार के पिछलग्गू बन जाएं। तो अगर सरकार अपने ही पसंद नापसंद को महत्व देगी और जो कमेटी ने जो रिकमेंड किया है उनके सुझाए गए नामों को किनारे कर देगी बिना कोई कारण बताए, तो इससे साफ है कि लोगों के दिमाग में संदेह पैदा होगा कि भाई इन्हें क्यों नहीं अपॉइंट किया गया, जबकि जो कमेटी है बकायदे उसने सर्च किया है, उसने इन्हें सेलेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कहा है कि हमने इसमें कितना वक्त लगाया, कितने लोगों के हमने इंटरव्यू लिए हैं, और इसके बाद फिर ये लिस्ट बनाई है और सरकार उसे किनारे कर दे रही है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि ये अच्छा अवसर है, जबकि आप थोड़ा सा इसके बारे में जान सकते हैं, तो मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: विजय कुमार दास, कृति शर्मा वाराणसी से, अभय कुमार, अमित बिस्ट टेहरी गढ़वाल से उत्तराखंड, और मोहम्मद बिलाल आरिफ। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।